الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی 90 نمبر آیت سے ہم نے آغاز کرنا ہے اس کا کچھ پہلو ہم زیر بحث لا چکے ہیں فرمایا کہ یہ کتنی ہی ان کی بے سمجھ ترو بہی انفسہم ان یکفرو بما انزل اللہ بغیاً کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس بیچ دی ہیں. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ نفس بیچنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا چیز پسند کر لی ہے, حق کو چھوڑ کر, انبیاء کی ہدایت کو چھوڑ کر غلط راستے پر جا پڑے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت والے دن سزا بھگتیں گے. تو انہوں نے کیا چیز اختیار کر لیا اپنے لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کفر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا نازل کر دی, اس جذبے کے ساتھ کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ ہم سے بڑھ کر ہو. بغی ان بینہم کے الفاظ, تو بغی کیا ہوتی ہے؟ بغی ہوتی ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں سرکشی اختیار کروں, اونچائی اختیار کروں, میں بلند ہوں وہ چھوٹا ہے. تو زدم زدہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے, ان کے خاندان میں سے نبی نہیں بنایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ دوسرے گھرانے سے بنا دیا ہے. تو اب وہ اس ضد میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں ہے. فباؤ بے غضب علی غضب, تو نتیجے میں وہ پلٹے اللہ کے غضب پر غضب لے کر. پلٹنا جو ہے یہ محاوراتاً استعمال ہوا ہے. ہمارے پنجاب میں بھی ایک محاورہ ہوتا تھا کہ کھٹ کے لے آیا چاندی, کھٹن گیا تو کھٹ کے لے آیا چاندی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سفر پہ جاتا ہے اور وہاں سے کچھ کما کر لاتا ہے. تو سفر پہ جانا اور واپس آنا, اس میں کمانے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو فباؤ بے غضب ان کا مطلب ہے وہ غضب لے کر پلٹے, یعنی انہوں نے کمایا کیا؟ غضب کمایا. بے غضب ان علی غضب, غضب پر غضب کمایا, یعنی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ناراضی حاصل کی. اب پیچھے آپ نے داستان سنی ہے, حضرت عیسیٰ کا انکار ہے, حضرت موسیٰ کی شریعت کے اندر کھیل کھیلتے رہے, یہ اس کو ماننے سے منکر رہے, اس میں ہیلے بازیاں کرتے رہے, اور پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو یہ کئی پہلوؤں سے خدا کا غضب ان پہ آنا چاہیے, اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ فباؤ بے غضب علی غضب, مسلسل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے بڑا ہی اہانت والا عذاب ہے. تو یہود کے ہاں جو وصف تھا کہ بس بات نہیں ماننی بغین کا, یہ جو جذبہ ہے یہ بہت ہی برا جذبہ ہے. جس قوم میں, جس فرد میں آ جائے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. بغی اگر کوئی چھوڑ دے تو وہ بالکل زبردست ہے, پھر وہ حقائق کو مانتا بھی ہے. بغی کہاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اپنے علم کا زوم یا زام, جو بھی تلفظ ہے دونوں ٹھیک ہیں, اپنے علم کا بارے میں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, اس کا سب سے اچھا اظہار آج کی دنیا میں ملحدین کرتے ہیں. وہ اپنے سائنس کے دو چٹانگ کا علم, اس کی بنیاد پر پورے پورے حقائق کا انکار کر دیتے ہیں. دو چٹانگ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکمل نہیں ہے, حقارت نہیں کرنا چاہتا, یعنی بہت تھوڑا سا ہے. خود سائنسدان, بڑے سائنسدان خود مانتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا علم نہیں ہے, ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی جانا ہے. اس کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنے لگ گئے کہ پوری کائنات کیسے بنی, کس نے بنائی, کون ہے کون نہیں ہے, یہ ممکن کیسے ہے. یعنی انسان بہت علم حاصل کر لے تب بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے علم حاصل کر لیا کہ نہیں. کل پتہ نہیں کون سی چیز سامنے آ جائے, کل کیا حقیقت کھل جائے, آج میری غلطی جو غلطی نہیں لگ رہی کل غلطی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آدمی اتنے بڑے تنتنے کے ساتھ, اتنے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہے کہ میں نے سب کچھ جان لیا ہے, یہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ دنیا کیسے بنی ہے, مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کیسے بنی ہے, اب خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسی بغین بینہم کا جو جذبہ ہے اسی کا ایک اظہار ہے جو ملحدین کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہوتا تھا نا کہ کچھ نہیں پڑھا ہوا لیکن آدمی पाना पड़ी तो वक्तों पड़ी, वो जो चीज़ है वो आपको जगह जगह नज़र आएगी। जो भी शख्स आपकी बात सुनने को आमादा नहीं है, ख़ा वो मैं हूँ या आप हूँ, तो उस समझ लीजिए कि कुछ मसला इस तरह का है कि उसके अंदर ये जज्बा हावी है कि मैं बेहतरीन जानने वाला हूँ। चुनाचे अगर आप इनकी सिर्फ किताबें उठा कर देखें मुल्हदीन की, तो ऐसे मज़हब का मजाक उड़ाते नज़र आएंगे कि जैसे उन्होंने सब कुछ जान लिया, अब उनकी बात में कोई ख़ता नहीं है। हालांकि इंसान के इल्म में हमेशा ये साबित हुआ है कि वो ख़ता का पुतला होता है, उसमें गलतियाँ होती हैं, समझने की गलतियाँ, जानने की गलतियाँ, डेटा की गलतियाँ, मालूमात की गलतियाँ, यानी कोई एक चीज़ नहीं है। आप एक रंग से चीज़ों को देखते चले जाते हैं, एक बड़ा आदमी आता है कहता हो इधर से देखो ये बात यूँ नहीं है यूँ है। तो न्यूटन की सारी बात पूरी कायनात पे फैलाई जा रही थी, आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं रिलेटिविटी है, अब रिलेटिविटी ख़त्म हो गई कोई और आ जाएगा। तो ये जो कायनात के इल्म है वो भी, जो मादे का इल्म है वो भी हमारा पूरा नहीं है। तो उसकी बुनियाद पर हम, दूसरी बात ये होती है कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ, बड़ा अक्लमंद हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई ज़हीन नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई अक्लमंद नहीं, ये भी बगी पैदा करता है। तीसरी चीज़ है कि सामने वाला आपको छोटा महसूस हो रहा है, अच्छा ये मुझे समझाएगा, इसकी बात मैं मान लूँ, ये भी बगी आ जाएगी। और अगर वो बेचारा गरीब हो, सादा सा आदमी हो, तो और मसला हो जाता है। हालांकि ज़हानत उसके पास भी है, मुताला उसके पास भी है, यानी अगर आप सिर्फ बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें कभी निकाल कर देखें साइंसदानों में और रियाजीदानों में और मजहबी जो बड़े बड़े लोग हैं, आप बस शक्लें देख कर कहेंगे अच्छा ये आदमी इतना बड़ा हो सकता है, तसव्वुर भी नहीं आता, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से। कई गरीब घरानों के लोग हैं और लेकिन कहाँ कहाँ पहुँचे, क्या क्या बातें दरियाफ्त की, तो ये हमारे अंदर जज्बा आ जाता है कि अच्छा इसकी बात मैं सुनूँ। और जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुमला है ना कि कोई बड़े आदमी को नबूवत आती ताइफ और मक्का की बस्तियों में से, तो हम मानते भी, यानी मतलब ये सरदार, बड़े आदमी का मतलब ये नहीं कि वो आदमी बड़े नहीं थे, बल्कि किसी सरदार पे आती, अबू जहल पे आती, अबू लहब पे आती, पता चलता है कि ठीक है अल्लाह तआला ने किसी सरदार को नबूवत के लिए चुना है। तो ये भी रुकावट बन जाए, ये भी बगी है। तो बगी तकब्बुर से पैदा होगी, बगी यानी तीनों पहलू जो मैंने बयान किए हैं वो तकब्बुर के हैं, वो ज़ात का हो, दूसरे की पोजीशन कमज़ोर नज़र आए आपको तब हो, वो अपने इल्म का हो, वो किसी वजह से पैदा हो जाता। तो ये अपना जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ये अपने सारे सारे पहलुओं से इस बात को साबित करती है कि मैं किसी मुश्किल में डाला गया हूँ, वो इम्तिहान की मुश्किल है। आप कुछ भी ना माने लेकिन आपके अंदर एक ज़मीर है जो इसकी आवाज़ लगाता रहता है। और ये उन इलाकों में भी, बहुत सारे मज़ामीन मैंने पढ़े हैं, किताबें भी देखी हैं, बाज़ नफ्सियात दानों ने लिखी हैं, कि जिन घरों में मज़हब से इन्हराफ हो चुका हुआ है, मज़हबी तसव्वुरात वहाँ नहीं हैं, उन्होंने भी जब पहली दफ़ा कोई गुनाह किया, जिसको गुनाह हम कह सकते हैं, तो उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैंने कोई काम ख़राब कर लिया, कोई मजहबी शऊर नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब फिर उन्होंने तसल्ली क्या दी, अच्छा मेरे माँ बाप भी कर रहे हैं, बहन भाई भी कर रहे हैं, दोस्त भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये वो उन जगहों पर भी देखा गया है जिन जगहों पर, जिन घरों में मजहब की ताकत, मजहब की तसव्वुर, मजहब की तालीम उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो ज़मीर ने एक आवाज़ दी है अंदर से। और अगर आप इन मुल्हदीन को देखिए तो वो ये इनकार करते दिखाई नहीं दे सकते कि अखलाक तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, इसका कोई इनकार नहीं करता। तो अगर अखलाक है तो मैं अखलाक क्यों अपनाऊँ, किस वजह से? मैंने भी अगर अखलाक के बाद मर के ख़त्म हो जाना है, और किसी जालिम ने भी अखलाक को छोड़कर मर के ख़त्म हो जाना, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं अखलाक को अपनाऊँ, किस वजह से? कोई बुनियाद ही नहीं, सिवाय इसके कि मैं ज़मीर की बात मानूँ, सिवाय इसके कि कुछ सवाल जवाब होने, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। तो अगर हम आखिरत का इनकार करते हैं, खुदा का इनकार करते हैं, तो मैं किस वजह से नेक बनूं? क्या मैं ज़िंदगी अच्छे तरीके से ना गुजारूं, खाऊं पीऊं, लूटूं, लोगों का माल बटोरूं, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती तो ज़बरदस्ती छीन लूं, कौन रोकेगा? क्योंकि मेरा ये जज्बा कि मेरी तमन्नाएं पूरी हों ये भी उतना ही कभी है। तो अगर दुनिया का इख्तिताम सिर्फ मौत है तो फिर मुझे नेकी इख्तियार करने की क्या वजह है, अखलाक पे कायम रहने की क्या वजह है, दयानतदारी इख्तियार करने की क्या वजह है। फिर कैपिटलिज्म का जो असल चेहरा है वो बेहतरीन है कि बस कमाना हर तरीके से, झूठे इश्तहार बना के लोगों को मजबूर कर देना, लोगों को आमादा करना, इंगेज करना, उनको ज़रूरत बना देना चीज़ें। अब कितनी चीज़ें हमारे घरों में ऐसी हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ज़रूरत बना दी, अब हम उसके लिए अपना माल खर्च करते हैं, लाते हैं ख़रीद ख़रीद कर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं अखलाक को अपनाऊँ। तो अखलाक का कोई इनकार नहीं करता, यूनिवर्सल अखलाक ना, छोटी छोटी इलाकाई चीज़ें होती हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो यूनिवर्सल अखलाकियात है उसका कोई इनकार नहीं करता। बल्कि एथीज़म में अब ये डिबेट चल रही है कि क्या अखलाक को मानने के लिए मजहबी होना ज़रूरी है, वो कहते हैं नहीं ज़रूरी नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि अखलाकी होना मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर का इंसान इतना ताकतवर है वो कहता है कि अखलाक अपनाओ, बदध्यानती नहीं करनी तुमने, झूठ नहीं बोलना तुमने, रेप नहीं करना तुमने। तो ये वो मेरे अंदर से, मेरा ज़मीर मेरी अंदर से आवाज़ें देता है। अब वो मैं सिर्फ इसलिए मान लूँ कि मैं इंसान हूँ, ये कौन सी बात है, कहाँ से साबित होगी, कैसे होगी। तो ये वो आप समझ सकते हैं कि ये सवालात इतने बड़े बड़े हैं, उसको सिर्फ साइंस की चंद दरियाफ्तों की बुनियाद पर उड़ा कर फेंका नहीं जा सकता, उसको पूरी गहराई से समझना होगा कि ये मसला क्या है, क्यों मेरा ज़मीर ऐसा बनाया गया है, या मैं क्यों ऐसा इवॉल्व हो गया हूँ, अगर एवोल्यूशन ही हुई है तो क्यों ऐसा हो गया हूँ, आप इसका क्या मतलब है कि मैं क्या बुराई छोड़ दूँ, क्या पुराने ज़माना बेहतर नहीं था कि बस मारो मार धाड़ के कबीले के ऊपर गारत करो, बच्चे भी उठा लो, औरतें भी उठा लो, माल भी उठा लो, बस बंदों को मार दो, तो उसमें क्या खराबी, कौन सा अखलाकी असूल ख़राब हुआ है, सिर्फ मेरे ज़मीर का मसला है। तो ज़मीर का मसला क्यों पैदा हो गया है, मैं ऐसे एवोल्यूशन से क्यों गुजर गया हूँ, ये वो सवाल आते हैं जिनको जवाब देना पड़ेगा, वगरना दुनिया देर नगरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये जो बगियन है ये हमेशा याद रखिए कि हदायत के रास्ते में हमेशा यही रुकावट बनता है। ये बगी साइंस की वजह से हो, ये बगी माल की वजह से हो, ये हुस्न व जमाल की वजह से हो, ये अपने मुआशरे में स्टेटस की वजह से हो, किसी वजह से भी हो सकती है। तो इसलिए इनके लिए इहानत वाला आज़ाद है। तो जो भी आदमी बगी पे आता है वो उस समय तकब्बुर पे खड़ा होता है, तकब्बुर पे खड़ा होता है तो उसको अजाब भी ऐसा मिलेगा जो उसके तकब्बुर के, जितनी भी सज़ाएं हैं वो जराइम के लिहाज से दी जाएंगी। तो जो बड़ा बनेगा उसको फिर अजाब भी इहानत का सामना करना पड़ेगा। वईज़ा कीला लहुम आमिनु बिमा अन्ज़लल्लाहु कालू नूमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफुरून बिमा वरा। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाते हैं उस चीज़ पर जो हमारे ऊपर उतारा गया है, और जो कुछ हमारे अलावा लोगों पर उतरा है या नहीं उतरा है हम उसका इनकार करते हैं। तो सिर्फ हम उसको मानते हैं जो हमारे ऊपर उतरा है, ये इन्होंने दावा कर दिया। एक दावा पीछे गुजर चुका है कि हमारे दिल जो है वो बंद कर दिए अल्लाह ताला ने, हम नाहक बातें नहीं मानते। उसी तरह आप कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसको मानते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ, यानी अब वो जो पीछे हमने बात की थी कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह क्या है कि अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे पर नबूवत नाजिल कर दी है जो इनके ख़ानदान में से नहीं है, ठीक है। तो अब दलील क्या बना रहे हैं ये कि हमने नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार इसलिए कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ उसको मानते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, ठीक है, और बाकी जो कुछ है हम उसका इनकार करते हैं। फरमाया कि वह हक़ मुसद्दिकल लिमाहू, हालांकि जिसका ये इनकार कर रहे हैं वो खुद हक है और उस बात के मुताबिक है जो इनके पास। तो जब जो इनके पास नाजल हुआ हुआ है जो बात उसके मुताबिक होगी इसका मतलब है कि उन पर नाजल हुई हुई है, समझ गए ना। जब ये कहा जाएगा कि मूसा की तरह का एक अलैहिस्सलाम रसूल आएगा उसको मानना, तो किस पर नाजल हुआ उसका मानना, यहूद पर नाजल हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने। तो उसकी सिर्फ एक छोटे से जुमले में इशारा कर दिया कि हालांकि कुरान मजीद हक है और जो कुछ इनके पास है तौरात इंजील उसके अंदर लिखा हुआ, उसके मुताबिक। तो गोया पहला जवाब ये दिया कि वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज़ को मानते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल हो, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये भी तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ कि एक रसूल ने आना है उसको मानना। लेकिन इसको छोटे से जुमले में करके बात को आगे बढ़ाया, कुल फालिमा तक तलूना अम्बिया अल्लाह मिन कब्ल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तुम नबियों को क्यों कत्ल करते रहे हो, वो तो तुम्हारे बीच में से थे। हज़रत ईसा को क्यों सलीब चढ़ाने की कोशिश की, हज़रत याहिया को क्यों मरवा दिया, हालांकि वो तुम्हारे अंदर से थे, तो क्यों ऐसा करते रहे हो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो बताओ ये अम्बिया को कत्ल क्यों करते रहे। पहला जवाब कुरान के हवाले से दे दिया कि ये भी तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुआ है, क्योंकि तुम्हारी किताबों में जो कुछ लिखा हुआ उसके मुताबिक आया है, उसका तकाजा है, पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। और दूसरी जवाब ये दिया कि तुम अम्बिया को क्यों कत्ल करते रहे हो इससे पहले अगर तुम मोमिन हो, तो अगर तौरात को मानते हो और ये बात कह रहे हो कि हम जो हमारे ऊपर नाजिल होता है वो हम मानते हैं, तो याहिया तो तुम्हारे ख़ानदान से थे, ईसा तो तुम्हारे ख़ानदान से थे, उनको क्यों नहीं माना अलैहिस्सलाम। तो ये अब ज़ाहिर है कि उनके इस दावे को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कि ये तुम्हारा असूल, अव्वल तो ये असूल ही ठीक नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने माना ही नहीं, बात ही नहीं की कि असूल ठीक है कि गलत है, मिसालें दे दी कि तुम इसके ख़िलाफ़ हो, और ख़ुद कुरान मजीद तुम्हारे ऊपर नाजल करदा बातों के आयन मुताबिक आया है, इसलिए उसको मानना पड़ेगा। तो अब यह है कि ये जो दावे होते हैं, जितने भी आप देखें वो लोग जो इनहराफ करने की नफसियात में होते हैं, उनके दावे इसी तरह से तजादात का शिकार होते हैं कि वो कहने को कुछ कह रहे होते हैं, हकीकत में कुछ होता है। अपने हमारी अपनी उम्मत में देख लें कि सारे ही सियासी लीडर जो हैं पाकिस्तान के, वो सारे ही देख लें कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खलूस जाहिर करेंगे, हरकत क्या होती हैं। तो इस तरह की आयतें नाजिल होनी चाहिए, अगर तुम पाकिस्तान के मुखलिस हो तो ये क्यों किया और ये क्यों किया और ये क्यों किया, बिल्कुल वही चीज़। असल में इखलास होता नहीं है, सिर्फ बातों में होता है, और अमल जो होते हैं वो उन दावों के ख़िलाफ़ होते हैं। तो ये फरमाया कि क्या तुम अंबिया को कत्ल क्यों करते रहे हो, ये उनके दावे को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कि ये तुम्हारा दावा दुरुस्त नहीं है कि तुम उन चीज़ों पर ईमान लाए हुए हो जो तुम पर नाजिल की गई हैं। आगे मज़ीद फरमाया, वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़े आयात और मोजज़ात के साथ आए थे, सुम्मत तख़ज़्तुम अल-इज्ज़ मिन बादिही, तो ये तुम ही ना कि तुमने फिर बछड़े को माबूद बना लिया था। तो क्या हज़रत मूसा ने इसका हुक्म दिया था, वो तो रोक रहे थे कि ना करो, तुमने कर लिया। हज़रत हारून ने रोका कि ना करो, नहीं माना। तो इसका मतलब है कि जो कुछ तुम पर नाज़िल हुआ तुम उसको नहीं मानते हो। तो बछड़े को इख्तियार करना, ये भी समझ लीजिए कि यहूद ने अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं बनाया था इसको, कि अल्लाह भी खुदा है और बछड़ा भी खुदा है, बल्कि ये समझा कि यही हमारे खुदा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये वो जुल्म है जो इन्होंने किया था। तो इसलिए उनका ये अमल मुशरिकाना नहीं है, बल्कि खुदा की तजसीम का अमल है और गलत चीज़ को खुदा बना लिया है। ये दोनों बातों में फ़र्क समझना चाहिए। एक यह कि मैंने कहा कि अल्लाह भी खुदा है और ये बछड़ा भी खुदा है, दूसरा आदमी कहता है नहीं नहीं ये बछड़ा ही मेरा खुदा है, वही जिसको अल्लाह कह रहे हैं ना वही नौज़ बिल्लाह बछड़ा है, ये वो गलती थी जो यहूद ने की है। तो इसको शिर्क नहीं कहना चाहिए, बस जुल्म कहना चाहिए, ये खुदा की हद दर्जा तोहीन है कि आप एक बछड़े को खुदा समझ लें। ये मुझे कभी समझ नहीं आती, मैं इन कौमों को, शायद हम तौहीद वाली उम्मत में पैदा हुए हैं इसलिए हमें ये बात अजीब सी लगती है कि खुदा खुदा होता है, उसको आप एक छोटी सी मूर्ति में ढाल दें, उसको लकड़ी में ढाल दें, उसको आप किसी बछड़े में ढाल दें, ये नाकाबिल फहम, मुझे ये कभी गिरफ्त में नहीं आता कि ये इंसान कैसे करते हैं कि जिसको हज़रत इब्राहिम बयान करते हैं अपने हाथों से बनाते हो और फिर पूछते हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो कुछ फ़लसफ़े होते हैं जो हम तराश लेते हैं और बस फिर बात मान लेते हैं। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया, क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, और आगे चलकर हम जब सूरह रहल अंबिया है या उसमें ताहा है या अंबिया है, उसमें सामरी ने जवाब दिया इस बात का कि हमने इस बछड़े को खुदा क्यों बनाया, क्यों खुदा समझा, अब वो पूरी बात झूठ बोल रहा है, वो भी ज़ाहिर है कि सामरी कोई सच्चा थोड़ा ही है। उसने कहा जी कि जब आपके पास फरिश्ता आया था तो मैंने उसके नक्शे कदम से मिट्टी थोड़ी सी उठा ली थी और उस मिट्टी का खमीर इस बछड़े में डाला था मैंने। अब अंदाज़ा लगाइए कहानी क्या है। तो आप कहानी हिंदू भी बनाते हैं, यूनानी भी बनाते थे, सामरी ने बना ली कि जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पाँव लगा वहाँ से मैंने मिट्टी उठाई और उसका खमीर इसमें डाल दिया। अब वो अल्लाह के फरिश्ते की पाँव की छुई हुई मिट्टी जो है वो इसके अंदर सराइत कर गई। तो अब सवाल पैदा होगा कि इससे खुदा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो फलसफे होते हैं, कहानियाँ होती हैं। अगर आप अपने भी मज़हबी जो बुज़ुर्ग खुदा बनाए गए या जिनसे मदद मांगी जाती है या जिनकी कब्रें पूजी जाती हैं अगर उठा कर देखें तो बस कहानियाँ होती हैं, सिर्फ कहानियाँ होती हैं, कोई कुछ नहीं होता। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि आजकल ऐसे सूफिया क्यों ख़त्म हो गए कि करामते नहीं करते, क्यों ख़त्म हो गए। वजह यही है कि बस वो कहानी है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहानियों से बुलंद होकर, मैं बताया था शायद किसी आप लोगों की नशिस्त में या किसी और में, अब वो इतनी असल में नशिस्तें होती हैं कि याद नहीं रहता, कि कुरान मजीद की अप्रोच एम्पिरिसिज्म की है कि आपने वो बात माननी है जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, अपने तखय्युल पर नहीं रहना है, अपने तखय्युल पर नहीं रहना। मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है, बड़ी फलसफियाना गहरी बात, मार्फत की बात, लेकिन वो हक नहीं है क्योंकि वो कुरान के ख़िलाफ़ है, नहीं मानी जा सकती। ये मुमकिन नहीं है कि मैं किसी ऐसी बात को मान लूँ जो कुरान मजीद के ख़िलाफ़। लेकिन तखय्युलात की दुनिया इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसे ऐसे फ़लसफे बनाती है कि लोग मानते हैं, फरेफ्ता होते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से, जाने तक ले लेते हैं, क्यों नहीं माना जाएगा, ये मेरे ख्याल में ऐसा है, मेरे ख्याल में ऐसा है। तो कुरान ने जो तबसरा किया था कि अपनी तमन्नाओं को दीन समझते हैं, वो यही चीज़ है। तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए थे मौजज़ात के साथ और आयात के साथ, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है, और उन्होंने नहीं कहा था कि खुदा जो है वो बछड़ा है, लेकिन तुमने बना लिया बछड़े को खुदा। वान तुम ज़ालिमून, और तुम जुल्म करने वाले हो। ज़ालिम का लफ्ज़ शिर्क के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद ने दूसरे मकामात पे वाज़े किया है कि तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया था। यहाँ वो शिर्क के मफहूम नहीं बल्कि अपनी जानों पर जुल्म ढाने का मफहूम है। कुरान के अल्फाज कुछ इस तरह के हैं कि ज़लम तुम अनफुसकुम बे इत्तिखाज़िकुम अल-इज्ल, सूरह अल-बकरा में शुरू में, कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म ढाया था जब तुमने बछड़े को माबूद बनाया था। आगे फरमाया कि वाइज़ अखज़ना मीसाकुम वरफ़ाना फ़ौकुम उत्तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ कालू समेना वासैना। और इनको ये भी बताओ कि बड़े दावा करते हैं कि हम अपने ऊपर नाजिल होने वाली चीज़ों को मानते हैं, तो जब हमने मीसाक लिया था तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया था और कहा था कि पूरी कुव्वत के साथ जो दिया जा रहा है उसको मानो और अच्छी तवज्जो से सुनो, तो जो कुछ दिया जा रहा है उसको कुव्वत से पकड़ो और तवज्जो से सुनो। तो इन्होंने अपनी तर्ज अमल से क्या बताया था, समेना व असैना, हमने सुना और नाफरमानी की। ये कालू जो होता है ये अरबी ज़ुबान में काला हमारी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये ज़ुबानें हाल से भी होता है और ज़ुबानें काल से भी होता है। ज़ुबानें काल का मतलब होता है कहना और ज़ुबानें हाल से होता है कि अपने अमल से जाहिर करना। तो यहाँ ये कालू इस मानी में है, ज़ुबानें हाल से है ना कि ज़ुबानें काल से। ज़ुबानें काल का मतलब काला यकूल से काल, और हाल यानी हालत से अपने तर्ज अमल से। तो कालू समय ना वास, यानी कहा नहीं उन्होंने समय ना वास ही ना, लेकिन अपने तर्ज अमल से ये बताया कि उन्होंने कहा था कि बछड़े को माबूद नहीं बनाना, बना लिया। उन्होंने कहा था तौहीद माननी, उन्होंने तौहीद नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि तौरात को मजबूती से थामो, लेकिन उन्होंने नहीं थामा, ये सारे काम होते रहे। तो ये इस अमल से साबित हुआ कि समय ना वास ही ना, उन्होंने सुना और नाफरमानी की। व उशरबू फ़ी कुलूबहिम, और रच बस गया उनके दिल में अलिज्ल, بچھڑا بے کفر ہم ان کے کفر کی وجہ سے. یہ اشربو فی قلوبہم العجل یہ محاورہ ہے عربوں کا. اس کے معنی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کپڑے کو پانی میں ڈبو دیں, رنگ میں ڈبو دیں, تو وہ اس کے ریشے ریشے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں اشربو فی, یعنی پانی پی لیا. جب آپ گھڑا لے کر آتے ہیں نیا سوکھا ہوتا ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیں تو وہ ترسا ہو جاتا ہے, اس کو اشربو فی, اس کیفیت کو کہتے ہیں اشربو. علامہ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق, جس طرح شاخ گل پہ جس طرح صبح دم, صبح گاہی کا نم, باد صبح گاہی کا نم. ٹھیک ہے جی, تو جس طرح صبح کی اوس پڑنے سے شاخ کے اندر پانی سرایت کر جاتا ہے اس طرح سے, تو وہی محاورہ ہے سما جانے کا کہ اس کے اندر سے پوری طرح. اشربو فی قلوبہم العجل, تو ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا. ہم اردو کے جو محاورات ہیں سما گیا تھا تو مطلب ہے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو گیا تھا, عادت ثانیہ بن گئی تھی ان کو, ایسا لگ رہا تھا اس کو چھوڑیں گے تو فوت ہو جائیں گے, کوئی اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی. جیسے آدمی کو عشق ہو جاتا ہے اس طرح سے ان کو بے کفر ہم, اس وجہ سے کہ یہ کفر کر رہے تھے. اب یہ بہت ہی سخت تبصرہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچڑا جو انہوں نے معبود بنایا تھا تو یہ معصومیت میں نہیں بنایا تھا, معصومیت میں نہیں بنایا تھا بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے بنایا تھا. اور پھر جو چیزیں کفر کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہیں وہ اشربو فی قلوبہم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں اس کے بڑے اچھے مظاہر, اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کریں گے, چڑھاوے کبھی نہیں چھوڑیں گے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ میرا حصہ کھا جاتے ہیں لیکن دیوتاؤں کا حصہ نہیں کھاتے. تو اس طرح سے یہ اتنی محبت ہو جاتی ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مرضی کہہ رہے ہیں لیکن کسی بزرگ کو ہلکی سی بات کہہ دیں کہ وہ تو انسان تھے, آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو جو چیزیں شرک کے طور پر اپنائی جاتی ہیں, جو مذہب خود بنائے جاتے ہیں, ان کے ساتھ انسانی جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. مسلک کے لیے جان دے دیں گے, اسلام کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. عجیب و غریب بات, تمام انسانوں کا یہ مشترکہ رویہ. تو جیسے ہی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت موسیٰ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں, وہ شریعتوں میں تبدیلی ہو رہی ہے, وہ ہیلے بازی ہو رہی ہے, وہ سب کچھ چھوڑا جا رہا ہے, نعوذ باللہ اللہ کی جگہ پر ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی فکر نہیں ہے, بچھڑے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے. اب جو پیچھے بات چل رہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان باتوں کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات سنانے کے بعد کہا, کل ان سے کہو, بے سما یا مرکم بہی ایمانکم, تمہارا اپنی چیزوں پر ایمان کتنی ہی بری باتیں سے جاتا ہے تمہیں کہ بچھڑے کو خدا بنا لیں, بچھڑے کو پوجنے لگ جائیں, کتنی عجیب بات ہے. تو کتنی ہی بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے, ان کن تم مومنین, اگر تم مومن ہو. اب یہ جو واشربو فی قلوبہم العجل, اس کا ایک اور پہلو واضح رہنا چاہیے. جب بھی کوئی قوم, کوئی فرد کفر کو, بری چیز کو جانتے بوجھتے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اندر سے کراہت ختم کر دیتے ہیں, اس بری چیز کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں. قرآن نے اس کو دوسرے لفظ میں بیان کیا ہے کہ کلن بما لدیہم فارحون, ہر فرقہ, ہر مسلک, ہر آدمی اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر مگن ہے, مطمئن ہے. کیا بات ہے, ہمارے مولوی صاحب نے کیا زبردست بات کہہ دی ہے, ہمارے رہنما نے کیا بات کہہ دی, حالانکہ وہ 100% جھوٹ ہو سکتا ہے, غلط بات ہو سکتی. مذہب اور شخصیت پرستی یہ اتنی جذباتیت پیدا کر دیتی ہے کہ حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو وہ اشربو فی قلوبہم ہو جاتا ہے. وہ آدمی جس شخصیت کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں, مان رہے ہوتے ہیں, پسندیدہ ہو جاتی ہے, अपना हीरो मान रहे होते हैं, लीडर मान रहे होते हैं, या मजहबी मानी में कुछ देवी देवता का दर्जा दे देते हैं, वो फिर अल्लाह ताला अंधा कर देते हैं, उनके पीछे फिर हर चीज़ जायज़ हो जाती है। यानी अगर हम कुतुब और अब्दाल का तसव्वुर देखें और अपने पाकिस्तान में सियासत का हालात देखें, तो आपको ये नज़र आएगा कि एक आदमी के पीछे लोग लगते हैं और बस लग जाते हैं, मोटी मोटी मुसीबतें नज़र नहीं आ रही होती, इतना फरेफ्ता हो जाते हैं लोग। तो ये अल्लाह का ज़ाबता भी है कि जब आदमी अकल से सोचना छोड़ दे और जज्बात को, तो जज्बात की बुनियाद पर शख्सियत परस्ती या तो असल में अल्लाह ने ये जज्बा रखा हुआ था अपने लिए कि लोग मुझे यानी अल्लाह को खुदा माने और खुदा परस्ती में मुबतला होकर मेरी बातों को माने, और अब वो जज्बा छोड़ दें कि खुदा की बात में भी मेन मेख निकालें, खुदा की बात को भी अकल पर तोलने की कोशिश करें। असल जज्बा ये था। लेकिन हम क्या करते हैं, खुदा के साथ जोड़ने की बजाय, जो बेखता है, बेऐब है, हर चीज़ को जानता है, उसके साथ जोड़ने की बजाय हम कुछ लोगों के साथ जोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं। क्या अब जो कुछ ये फरमाएगा बिल्कुल दुरुस्त है? चुनाचे हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का सिलसिला यही होता है कि बैत की जाती है हाथ पे हाथ रख कर कि जो मैं कहूँगा वही करोगे, तो ये क्या चीज़ है? खुदा परस्ती है, खुदा बनाना है। ये सिर्फ अल्लाह का और अल्लाह की वही की रोशनी में अंबिया का हक है कि हम उनकी हर बात को माने और किसी का हक नहीं है। तो उशबूफ़ी कुलूबहिम उलिजल, असल में उस खुदा के उस नफ्सियाती कानून का भी बयान है और खुदा के उस हदायत के कानून का भी बयान है जो कुफर की वजह से, बातिल को इख्तियार करने की वजह से इंसानों पे जारी कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ उशबूफ़ी कुलूबहिम उस साइंस ये भी हो चुका हुआ है कि उनके दिलों में साइंस रच बस गई है, वो हर चीज़ को उसी निगाह से देखते हैं। अलामा इकबाल ने अपने बारे में कहा कि मुझे मज़हब की बात उस वक्त समझ आएगी जब फ़लसफियाना अंदाज में उसको बयान करोगे। तो क्या हुआ कि फ़लसफ़ा रच बस गया हुआ। मैं उनकी तनकीस नहीं कर रहा, बड़े आदमी हैं हमारे, मोमिन आदमी हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना मिजाज का तब्दील हो जाना, अब मज़हब की वो बात आपको पसंद ही नहीं आएगी जो फ़लसफ़े के मुताबिक नहीं है। और मैंने दौरे जदीद के बाद बड़े सूफिया की ज़ुबान से ये जुमला सुना है अपने गुनाहगार कानों से कि जो मौलवी साहब का मज़हब है उसमें ज़हीन लोगों के लिए रखा क्या है, ज़हीन लोगों के लिए रखा क्या है। वही कहानियाँ हज़रत मूसा की, वही कहानियाँ हज़रत याहिया की, वही कुरान कह रहा है कोई काफिर हो गया, कोई मोमिन हो गया, इसमें रखा क्या है ज़हीन लोगों के लिए। तो एक तो वो बगीन है और दूसरा ये कि उशबूफ़ी कुलूबहिम अलफ़लसफ़ा अस्साइंस अलइज्ल, इसको पूरी तरह से समझना चाहिए कि कहीं मैं किसी इस तरह की चीज़ का शिकार तो नहीं हो गया। अगर नहीं पकड़ पाए अपनी, तो किसी माहिर के पास चले जाएं कि मुझे चीज़ें ऐसे लग रही हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है, तो वो शायद आपकी कुछ रहनुमाई कर सके। हमारे यहाँ जब भी गुमराही आएगी तो या वो बगी वाला जज्बा है या उशरबूफ़ी कुलूबहिम अलइज्ल, कोई बात इतनी रच बस गई है, इतनी पसंदीदा बन गई है कि अब, यानी मैंने ये बात का देखा है कि शख्सियत परस्ती की वजह से हमारे बुज़ुर्गों में बहसें होती रहती थी, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई आले हदीस है, तो बहसें होती रहती थी, तो बहसों में गर्मा गर्मी हो गई है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी बात अच्छी लगती, कोई दलील नहीं है। यानी बेबसी जब हो जाती है तो गालियों पर आ जाते हैं। क्यों बेबसी किस वजह से हो गई? कि दलाइल कोई नहीं है, तो अब गालियों में क्यों आ गए हैं कि अपनी बात छोड़नी नहीं है। तो ये वो जगह है जहाँ पर, तो जिस ग्रुप में आप देखें कि दूसरों का मजाक उड़ाने का पहलू गालिब है, समझ लीजिए कि वो इस चीज़ का शिकार है। अगर उसके अंदर उशरबूफ़ी कुलूबहिम नहीं हुआ तो दूसरों का मजाक नहीं उड़ाएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद सादा जगह पर खड़ा है और वो बातों को समझने वाला है, समझाने वाला है। तो ये नफ्सियाती चीज़ जो है इसको भी समझना चाहिए, ये बड़ी ही मोहलक है इंसान को, ख़ास तौर से इल्म के रास्ते में, ख़ास तौर से हदायत के रास्ते में। तो बेसमा या मरुकुम बही ईमानुकुम اب بندہ مومن کا ایمان اس کو اس طرح کی حرکتوں کی طرف بلائے کہ وہ اللہ کی شریعت کو تھامنے کی بجائے کہے سنیں اور انکار کر دیں خدا کے ساتھ خدا کی حیثیت کی وجہ سے. خدا کی حیثیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں, ان کے علم میں, ان کے قدرت میں, ان کی صلاحیتوں میں, ان کی قوتوں میں, ان کی قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے, اور جو وہ حکم دیتے ہیں وہ اپنے مقاصد کے حساب سے بے خطا حکم ہوتا ہے. اس میں جب ہم مین میخ نکالتے ہیں, عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس جادہ مستقیم سے ہٹ رہے ہیں جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. میری اس بات سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مذہب عقل کو سمجھ نہیں آتا. نہیں, مذہب عقل کو سمجھ آتا ہے. خاص طور سے اسلام باقی تمام مذاہب کے درمیان میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اس پہلو سے کہ اس کی باتیں عقل و فطرت کے عین مطابق ہیں, لیکن کچھ چیزیں امتحان کے لیے رکھی ہوتی ہیں, وہ عقل و فہم میں سمجھ میں آنے کے باوجود مشکل ہوتی ہیں. یہ بات ہمیشہ مشکل رہے گی انسانوں کے لیے کہ بیٹی کو آدھا حصہ ملنا ہے بیٹے کے مقابلے میں, یہ مشکل رہے گی. یہ بات ہمیشہ مشکل رہے گی کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شوہر تمہارا قوام ہے, ہمیشہ مشکل رہے گی. یہ سمجھ آئے نہ آئے, خدا کا حکم ہے اس کو حکم کے طور پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو اگلا جملہ بولا کہ جو صالحات ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں. کہ اللہ نے امتحان رکھا ہے تو اس امتحان میں جو صالح بیویاں ہیں وہ شوہر کی قوامیت کے پہلو سے بات کو تسلیم کرے گی. تو یہ جو خدا کا قانون ہوتا ہے اس کا یہ پہلو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. بلا شبہ اسلام کی کوئی تعلیم عقل و فطرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ جذبہ کہ مجھے وہ بات مانوں گا میں اللہ کی جو مجھے عقل میں سمجھ آئے گی, یہ جذبہ غلط ہے, یہ جذبہ درست نہیں ہے. ہم اس کی حکمتوں پہ غور کرتے رہیں گے کیونکہ وہ بے خطا خدا کی طرف سے حکم آیا ہے, تو ہم مانیں گے. ہاں, جب سمجھ نہیں آ رہا تو غور کرتے رہیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو خدا کی طرف سے دین کا جو جذبہ یہ کر رہے تھے, اپنا اظہار کر رہے تھے کہ ہم اپنے دین پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے, اور جو دوسروں کے اوپر نازل ہوا ہے یا دوسروں کی چیزیں ہیں اس کو ہم نہیں مانتے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سوال کر دیا. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں اور اللہ کی باتوں کو مانتا ہوں, تو اس کے ماننے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آدمی ٹھٹک جاتا ہے, رک جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح معنی میں صاحب ایمان نہیں ہے. لیکن ایمان کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے اور میں جو کچھ اللہ نے میرے اوپر نازل کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں, اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے قیامت والے دن. ٹھیک ہے, اور یہود اپنے بارے میں کہتے بھی ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی ایک دن, اگر چھوئے گی تھوڑی دیر کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس پورے جو دو تین نقطے میں نے بیان کیے ہیں ان سب کو چیلنج کر دیا. فرمایا کہ کل ان سے کہیے, ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت خالصۃ صرف اور صرف تمہارے لیے اللہ کے پاس, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے آخرت میں جو کچھ جنت ملنی ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف تمہارے لیے ہیں, تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو, دنیا میں آدمی کیوں ہے؟ اس لیے نا کہ نعمتیں ملنی ہیں, اور وہاں تو آخری درجے کی نعمتیں ملنی ہیں. تو اگر نعمتوں ہی کا شوق ہے, خدا کے ہاں رضا جوئی اور سب کچھ تمہیں حاصل ہے, تو تمنا کرو. تو یہ آدمی کے ایمان کو چیک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ تصور کریں کہ کیا میں اس وقت مرنے کو تیار ہوں. اگر میں تیار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ اچھی حالت میں ہوں ایمان کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اور اگر نہیں ہوں تو جان لیجئے کہ بس ایمان کا دعویٰ ہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت سے ڈر نہیں لگتا, لگے گا, نیک لوگوں کو بھی لگے گا. صرف یہ ہے کہ کیا مرنا जीना इनमें से कौन सी बेहतर चीज़ है। अगर आप समझते हैं कि जीना बेहतर चीज़ है तो समझ लीजिए कि ईमान उस तरह का नहीं है। तो मोहब्बत जो है खुदा के साथ, खुदा की शरीयत पे अमल करना, कामयाब अपने आप को समझना, इस दावे को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया कि तुम ये दावा जो कर रहे हो कि तुम अल्लाह के नज़दीक कल कामयाब होगे क़यामत वाले दिन, ये दावा तुम्हारा गलत है। इस दावे की गलती इसी से वाजे होती है कि तुम मरना नहीं चाहते हो। अगर तुम्हें इतना भी यकीन होता कि हाँ हम कामयाब होंगे तो तमन्ना मौत की कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर दूसरी कोई तवहम परस्ती भी होती है। मसलन अगर मेरी एक ज़माने में ये जुमला मुँह पर आ जाता कि बस जी जा रहे हैं जी अल्लाह खुदा हाफिज़ दुनिया से, तो सारे इधर बैठे हुए अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह। वो हमारे यहाँ ये तवहम परस्ती का भी एक मसला है कि ज़ुबान से निकलेगा तो कहीं पूरी ना हो जाए बात, वो खुदा ने जो तकदीर लिखी है वो होनी है, उसमें क्या मसला है। तो ज़ुबान से निकली हुई बातें अल्लाह ताला इस तरह नहीं करता कि चलो ये खुदा के कायदों के ख़िलाफ़ है। उसने कुरान मजीद में बहुत अहम बात है ये कि हर चीज़ की एक अजल मुसम्मा है, उसने अपने वक्त पर पूरा होना है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए ये बात परेशान नहीं होना चाहिए किसी कहने से, किसी की बददुआ से कोई आदमी की उम्र कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फरमाया कि तुम अपने इस दावे में सच्चे नहीं हो कि हम जो हमारे ऊपर नाजल हुआ है उस पर ईमान रखते हैं और क़यामत वाले दिन हमें ही आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अगर तुम सच्चे होते तो मौत की तमन्ना कर सकते लेकिन तुम नहीं करोगे। फरमाया वलन यतमन्नौ, ये बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन कभी भी, बिमा कद्दमत अयदीहिम, अपने करतूतों की वजह से। इनको अपनी करतूतों का ही पता। कद्दम अयदी का मतलब होता है जो कुछ आपके हाथों ने किया। इसमें कुछ गलत फहमी उर्दू वालों को हो जाती है क्योंकि कद्दमा का मतलब आगे बढ़ाना भी होता है और कद्दमा का मतलब पहले करना भी होता है। यानी हम जैसे उर्दू में एक मुहावरा ना, अगले लोगों की बात है, अगले लोगों का मतलब है जो गुजरे हुए हैं और अगले लोगों का मतलब है जो आने वाले हैं, दोनों मानी बोला जाता है। अगले लोगों का अगले ज़माने का जिक्र है तो वो लगता है कि माजी में मुस्तकबिल में जो आने वाला है। तो इस तरह के बाज़ अल्फाज होते हैं कि जिसमें ये मफहूम भी होता है गुजरे हुए, और तो कद्दमत का मतलब जो पहले इन्होंने कर रखे, और एक मतलब ये लिया जा रहा है कि जो अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे हैं ये जो, तो दोनों मतलब हो सकते हैं, दोनों का इम्कान है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले ये कर चुके हैं, जो इनके आमाल हैं इनके हाथों में, जो इनकी कमाई है उसकी वजह से ये इसकी कभी तमन्ना नहीं करेंगे। अब बिमा कद्दमत अयदीहिम, जो ऊपर मैंने बात की थी कि इन्होंने बछड़े को कुफर की वजह से माना था और इनको ये पता है बिमा कद्दमत अयदीहिम से वाज़े हो रहा है कि ये कत्ल अंबिया करते रहे हैं, इनको शऊर है इस बात का, शरीयत में जो हीलाबाजी करते रहे इनको शऊर है इस बात का, अभी जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर रहे हैं उसका शऊर है इनको, इसी वजह से काफ़र करार पाते हैं। ऐसा नहीं कि मासूमियत में इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कहें तुम काफ़र हो गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल वाज़ है इनके ऊपर। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को अच्छी तरह जानते हैं, कोई पोशीदा बात नहीं अल्लाह के सामने। अल्लाह को मालूम है कि ये क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं, क्या क्या इनके तसव्वुरात हैं, और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह झूठा साबित करने के लिए क्या क्या साजिशें करते हैं, वो सब कुछ अल्लाह ताला जानते हैं। तो इनके ये सवालात होते थे, ये जो तबसरे होते थे, ये सिर्फ इसलिए होते थे कि ये नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने कुफर को जस्टिफाई कर सकें। यहाँ रोक लेते हैं, वक्त हो गया है, अगरचे मज़मून अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे।